वे लोग तो पकड़े गए, तो सबको सूली पर चढ़ाया गया पकड़ करके। तो उस साधु को भी सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन वो मरे नहीं। चोर तो सब मर गए, ये तो तेजस्वी थे, मरे नहीं। फिर राजा को सूचना दी गई, अरे वो तो साधु मर नहीं रहा है। बहुत आश्चर्य में राजा पड़ गया। आकर दिखा तो तेजस्वी साधु क्षमा मांगने लगा, फिर भेजा। तो राजा पर वे रंज नहीं हुए, क्रोधित नहीं हुए, साधु सीधे जमराज जी के पास पहुंचे। और पहुंच करके उन्होंने प्रश्न किया कि तुम किस तरह से दंड दे रहे हो, हमने क्या अपराध किया था कि हमको सूली पर चढ़ाएंगे। जमराज जी फिर रजिस्टर चाहे कंप्यूटर देखे होंगे जो भी इनका चित्रगुप्त जी से कहा कि देखिए, कुछ भी नहीं था वहां पर, केवल एक था कि बचपन में कीड़े के पूछ में उन्होंने सीख खोस दिया था, इसी के लिए दंड दिया गया। तो फिर मंडप ऋषि ने कहा कि आप देखिए कि कितने वर्ष का होने पर कर्म फल लागू किया जाता है। तो उसमें देखा गया तो 14 वर्ष लिखा गया, 14 वर्ष का होने पर कर्म फल लागू होने लगता है मनुष्य पर। तो उस 7 वर्ष की अवस्था में लड़का गलती किया था, तब पूछे मंडप ऋषि, मैं 7 वर्ष की अवस्था में जब चेतना डेवलप नहीं रहती उस समय यह गलती किया था ना, तुम क्यों दंड दिया मुझको ऐसा। जमराज जी कहने लगे कि तो भूल हो गई, बहुत भूल हो गई शूद्र कहीं के, तुम इस पद पर रहने लायक नहीं हो, तुम शूद्र हो जाओ। तो मंडप ऋषि के साप से जमराज जी शूद्र बने थे, और जब तक वे इधर थे तब तक आर्यमा जी जो पितरों के नायक हैं वे पापियों को दंड देते थे उनके पाप के अनुसार जथावत अघकारिष। अब शुद्ध जी एक कथा कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को इस बात का पता नहीं था कि भगवान कृष्ण चले गए हैं पृथ्वी को छोड़ करके, और उनको अपना वंशधर प्राप्त हो गया था परीक्षित नाम का लड़का, तो बहुत प्रसन्न थे, खुश थे कि भगवान की कृपा से मिला हुआ है। तो इस प्रकार से लोक में लोग एवं गृह सुसक्ता नाम प्रमत्ता नाम तदी है या अत्यक्रामद अभिज्ञात काल परम दुस्तर। विदुर जी ने देखा कि किस तरह से संसार के लोग घर में आसक्त, यूं गृह सुसक्ता नाम प्रमत्ता नाम तदी है। गृह सुसक्त और स्वकृते सुप्रमत, जो नहीं करना चाहिए उसमें खूब आसक्त है, और जो करना चाहिए उसमें बिल्कुल लापरवाह। गृह सुसक्ता, वास्तव में इस संसार में घर गृहस्थी में व्यक्ति जितना रचा पचा रहता है, आसक्त रहता है, उतना और कार्यों में नहीं रहता है। भगवान को एक तो ऐसे ही जीव संसार में भूला हुआ है, और घर गृहस्थी बसाने मेंटेन करने आदि की चिंता में काम करने में फंसा रहता है। गृह सुसक्ता ना और प्रमत्ता ना, और जो भगवत भजन है भक्ति है, या एक दिन शरीर छूट जाएगा, काल की गति बहुत विकराल है, इस विषय में एकदम प्रमत्त असावधान। तो विदुर जी ने देखा कि इस तरह से काल बीत रहा है, परम दुस्तर काल है, इसको पार पाना कठिन है, एक दिन शरीर छूट ही जाता है, धीरे धीरे बुढ़ापा आती है, बुढ़ापा के बाद शरीर छूट जाता है। तो विदुरस्तद अभिप्रत्यधत राष्ट्रम अभासत, इस बात को देखकर विदुर जी ने धृतराष्ट्र महाराज से कहना चालू किया। उस समय केवल गांधारी उनके साथ थी, अथवा गांधारी कहीं दूसरी जगह होगी, तो धृतराष्ट्र महाराज से कहने लगे, किसी भी मनुष्य को ये विचार जरूर करना चाहिए कि हमारा जीवन किस तरह मृत्यु के मुख में जा रहा है, काल कितना आयु खा गया। अब जो लोग 45, 50 या 55 वर्ष के हैं, तो 55 वर्ष तो गया ना, और सबसे सुंदर दिन चला गया, अब तो केवल टॉयलेट जाने भर समय बाकी रहा। अरे बुढ़ापा में घर के लोग प्रशंसा करते हैं उस बूढ़े की और कहते हैं अभी तो बिना किसी की सहायता के टॉयलेट चले जाते हैं, बहुत भारी पुरुषार्थ कमा रहे हैं। तो खुश होते अभी तो बहुत अच्छे हैं, बस इतनी ही इतना ही सक्सेसफुल जीवन रहेगा कि अपने से चले जाए बाथरूम शौच आदि कर लें, बस तो शरीर उतना ही बाकी रहा ना। जो भगवत भजन है उसमें लोग प्रमत्त रहते हैं, असावधान। किसी कहा जब करते हैं, हाँ करते हैं, कितने वन राउंड करते हैं और काम कितने राउंड कर लेते हैं, है ना। मंडे से फ्राइडे तक कितना काम लोग करते हैं, क्या क्या भोजन करना हो तो एक ही चपाती थोड़े खाएंगे, कई खा लेंगे। लेकिन भजन में ऐसा लगता है कि भजन एक ऐसी चीज है जो ऑप्शनल है, हमारी इच्छा पर है करे या ना करे, और बाकी तो दूसरे की इच्छा से करना पड़ता है। सब जगह रूल है, ऊपर से ही ऑर्डर होता है, इतना करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, ऊपर से ऑर्डर है, ऐसे ड्राइविंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इतना किराया है, ये है। लेकिन भजन में लगता है भजन करने वाले पर ही सब डिपेंड है, जितना करे ना करे। अजीब आदमी बना लिया, ये नहीं पूछता है कि कोई वैदिक अथॉरिटी शास्त्र हमारे लिए क्या कह रहा है, कितना भजन करना चाहिए, ये पता लगाना चाहिए ना। तो रोड पर जाइए, रोड पर भी आप बाध्य हैं, इतना से ज्यादा नहीं चला सकते, इतना स्पीड से ज्यादा नहीं चला सकते, और कहीं कहीं तो हमने देखा कहा इतना से कम नहीं चला सकते। हम कोई हाईवे पर जाए और 10 माइल पर आवर की स्पीड से चल रहे और कहे कि हम ऐसे ही चलेंगे तो टिकट मिल जाएगा, ठीक है चलिए, लेकिन फिर बाद में चल नहीं पाएंगे, लाइसेंस वाइसेंस भी जब्त हो जाएगा। लेकिन एक भक्ति ऐसी है जिसमें आदमी कहते नहीं हम इतना ही कर सकते हैं, मुझे टाइम नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो सब जमराज जी बताएंगे लास्ट में, सारा टिकट एक जगह इकट्ठा होगा। और के लिए बाध्य, दूसरा कोई निश्चित करेगा, भजन बस हम अपने मन से निश्चित करेंगे, कब जगना है, कब सोना है, क्या खाना, कैसे पहनना, क्या है। तो इसको प्रमत्त कहते हैं, असावधान होना। मरने से पहले भगवान में चित पूरा लगना चाहिए, भगवान की भक्ति में, तब शुभ गति होती है। नहीं तो संसार में चेतना रह गई और शरीर छूट गया तो बहुत बड़ा घाटा है, बहुत बड़ी हानि होती है। विदुर जी इस बात को देख, खासकर धृतराष्ट्र महाराज के विषय में, तम अभासत, विदुर जी ने कहा राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयम आगतम। हे महाराज, हे राजन, निर्गम्यताम, निकलिए निकलिए घर से, निकलिए निर्गम्यताम। और संबोधन कर रहे हैं राजन, धृतराष्ट्र उस समय राजा नहीं है, लेकिन पहले के उनके राजापना के अभिमान को उभार रहे हैं कि राजा है ना आज, निकलिए निकलिए, अब तो राजा है नहीं ना, अब तो राजा नहीं है ना, एक दिन राजा थे और आज दूसरे की कृपा पर जी रहे हैं, छी छी। ऐसा आदमी के हृदय में हुक लग जाती है। प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में अपना पोजीशन रखना चाहता है। हमने भारतवर्ष में देखा है जब कोई व्यक्ति अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता है, राष्ट्रपति नहीं रहता है, या कोई साधारण विधायक सांसद भी नहीं रहता है, तो वो ये लिख करके संतोष करता है कि भूतपूर्व सांसद, चलो एक अहम का पोषण होता है, पहले था अब भले नहीं। और लोग उनको कहते भी हैं विधायक जी या सांसद जी, चाहे ये वो, भारतवर्ष में बहुत बोलने की ये शालीनता है, लोग पूर्व से संबोधित करते हैं। तो यहां राजन संबोधन किया जा रहा है धृतराष्ट्र महाराज, कोई राजा नहीं है इस समय, परिवार का ही कोई नहीं बचा है, राजा क्या होंगे। तो राजा शब्द दिया जा रहा है कि हृदय में हुक लग जाए, दुख लगे कि हाय रे मैं आज किस दशा में हो गया। तो कहने का आशय है विदुर जी का पहला अटैक है प्रीचिंग में कि आपका राज्य गया ना। राज्य गया उसी तरह देह जाएगा, सब जाएगा। निकलिए निकलिए, भागिए भागिए, चलिए भगवान का भजन कीजिए, निर्गम्यता। और इतना ही नहीं करें कि निकल चलिए, निर्गम्यता शीघ्रम, शीघ्र निकलिए, चलिए अभी चलिए अभी चलिए। और युधिष्ठिर महाराज आदि सब सोए हुए हैं, रात्रि का समय, निर्गम्यता शीघ्रम, शीघ्र निकल चलिए। पश्येदम भयम आगतम, आप जरा विचार कीजिए, विचार कीजिए, भय आ गया। भय आगतम भयम, भय का अर्थ होता है मृत्यु। इस संसार में सबसे ज्यादा भय व्यक्ति को लगता है मरण से, सबसे ज्यादा भय मरण से लगता है। अब कोई अस्पताल में भर्ती हुआ हो तो जी रहा है, स्वजन पूछते हैं कैसे हैं, ठीक है जी रहे हैं, लेकिन भय लगा रहता है कहीं वो ना हो जाए, मरण ना हो जाए। मरण से भय लगता है, डरती है रूह यारों, और जी भी कांपता है। मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है, मरना भय। भागवत में भय शब्द मरण को कहा गया। तो विदुर जी कह रहे देखिए मरण आ चुका है, आ चुका मरण, अब चलिए निकलिए निकलिए निकलिए। तो निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयम आगतम, जल्दी निकलिए। वो जोर से नहीं बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, जल्दी निकलिए निकलिए, भय आ गया, आपके मरने का समय आ गया। तो धृतराष्ट्र महाराज कहते हैं विदुर, तो मरने का समय आ गया तो मरण का प्रतिक्रिया करना चाहिए ना, उसको काउंटर करने का कोई उपाय करना चाहिए जब मृत्यु को रोका जाए। भागने से थोड़े मृत्यु छोड़ेगी, तो कोई उपाय किया जाए ना, प्रतिक्रिया करनी चाहिए ना। जैसे मान लीजिए शीत पड़ रहा है तो कोई हीटर जलाना है, आग जलाना है, बीमार पड़ गए तो मेडिसिन लेना, इसको प्रतिक्रिया कहते। तो जो मरण आने वाला है तो उसको रोकने का उपाय करना चाहिए ना, प्रतिक्रिया करनी चाहिए ना। तब विदुर जी कहते हैं प्रतिक्रिया में जस्य कुतश्चित करहिचित प्रभो, हे प्रभो प्रतिक्रिया न जस्य है। इस संसार में सब चीज की प्रतिक्रिया भगवान ने बनाया है, लेकिन मरण की प्रतिक्रिया नहीं बनाया कहीं भी और किसी भी उपाय से। हिरण्यकश्यप आदि बहुत प्रयास किए कि वे न मरे, बहुत टॉप क्लास का जो प्रतिक्रिया हो सकती है, ब्रह्मा जी से इंश्योरेंस लेना सब करना, लेकिन मर ही गए। हिरण्यकश्यप मर गए, वो तो प्रतिक्रिया करने की सोचा, बहुत वरदान प्राप्त किया, ऊपर न मरू नीचे नहीं, रात में दिन में नहीं, अस्त्र से नहीं, जहर से नहीं, पशु से नहीं, आदमी से नहीं, देवता से नहीं, सब कंप्लीट था उसका, लेकिन मर गया। विदुर जी कहते हैं कि मृत्यु की कोई प्रतिक्रिया भगवान ने नहीं बनाया है राजन, आप निकलिए निकलिए निकलिए, मरना निश्चित। और कुतश्चित कर ही चित प्रभु, कुतश्चित करते कहीं भी, व्यक्ति कहीं भाग करके जाए मरना पड़ेगा। जैसा मैं कल कहा था कि भारत से लोग भाग भाग कर अमेरिका में आना चाहते हैं, तो इधर क्या नहीं मरेंगे, इंग्लैंड में, स्वीडन में, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सब जगह मरण, यहां तक कि स्वर्ग में भी मरण है, पाताल में भी मरण है, इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। और सबकी प्रतिक्रिया है, ऐसा देखा गया है कि बुढ़ापा की प्रतिक्रिया हुई है, कायाकल्प करवा करके, बहुत पावरफुल औषधि लेकर, मेडिसिन लेकर के, या योगाभ्यास करके, एक्सरसाइज करके बुढ़ापा को रोका जाता है कुछ काल के लिए, प्रतिक्रिया है। शीत की प्रतिक्रिया है, इतना ठंडा पड़ता है यहां, लेकिन फिर भी आप लोग हीटर आदि जलाते हैं जाड़े में, या गर्मी के दिन में भी एसी चलाते हैं, तो ये प्रतिक्रिया है। भूख की प्रतिक्रिया है, कुछ भोजन दे देते हैं शांत हो जाते हैं। लेकिन मृत्यु की प्रतिक्रिया नहीं है। कोई कहीं बचा है, कोई कहीं भूल से बच गया है किसी कोने में संसार के, कि जो मरा न हो भाई, ऐसे ही जमराज जी की दृष्टि न गई हो वहां कोई अपने को हाइड करके रह गया हो, या चाहे जमराज जी का ध्यान ही न गया, कहीं है ऐसा नहीं, तो कहीं नहीं है मृत्यु की प्रतिक्रिया। कुतश्चित कर्हिचित प्रभो, हे प्रभु, हे समर्थ, हे भाई, आप समझ सकते हैं, आपको प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है। जो अंधे लोग होते हैं उनकी आंखें बुद्धि ही होती है, उनको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, और हायर नाम दिया जाता है। तो आप तो समझ सकते हैं, तो वही भगवान काल हम लोगों के लिए आ गए, इसलिए चलिए चलिए चलिए। जेन चैवा विपन्न एम प्राण प्रियतमय रपि जन सद्व विजुचेत किमुता निर्धनाद भी। तब दूसरा प्रश्न धृतराष्ट्र महाराज करते हैं कि विदुर, हरि कैसे धन छोड़ दें, कैसे घर छोड़ दें, कैसे छोड़ दें? अरे महाराज, प्रिय शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, अभी आप धन आदि की बात कर रहे हैं। जेन चैवा भी पन्नो यम प्राण प्रियतमय रपि जन सद्यो विजुज्यत किम उतारने धनाद भी। उस मृत्यु के वश में होकर के व्यक्ति को अपने प्रियतम प्राण से भी हाथ धोना पड़ता है। इस शरीर को प्राण पूरा कहा जा रहा है, कितना प्रिय शरीर है, ये शरीर भी छूट जाता है जीव, इस प्रियतम शरीर यह भी छूट जाता है। किम उतान्य धनाद भी, फिर धन आदि छूट जाए तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। आप कहते हैं धन छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, अरे आपका क्या नहीं छूट गया है आप बताइए। ये रात्रि के समय विदुर जी उनको समझा रहे, कुछ बाकी है आपका, क्या नहीं छूट गया आपका, और आप कहते हैं कि धन छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, दे छूटने वाला है, अभी धन की चिंता कर रहे हैं, ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा। आप जरा विचार कीजिए, पितृ मातृ सुहित पुत्र हतास्त विगतम बया, आपके पिता तो नहीं रहे ना, विचित्र वीर्ज मर गए ना, तो अपने पिता को भी कह रहे थे पितृ, पितृ का अर्थ है पिता या पितामह, भीष्म पितामह चले गए, विचित्र वीर्ज चले गए, पूर्वज जितने थे सब चले गए, आपके सामने ही चले गए ना, पितृ और भ्रातृ भाई भी मर गए, पांडु महाराज भाई थे और दूसरे जो इनडायरेक्ट भाई थे सब गए ना इस महाभारत युद्ध में, सुहृत अपने जितने संबंधी थे सब मर गए, यहां तक कि पुत्र आपके सौ सौ पुत्र यहीं मर गए ना, सब तो छूट ही गया, और फिर आप कहते धन छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, अरे बाप रे, इस तरह से आसक्ति। पुत्र मर गए ना, पहले के जो जन्म लिए थे वे मर गए, बाद में जो जन्म लिए थे वे मर गए, तो बीच में आप क्या अमर रहेंगे? आप जरा विचार कीजिए, ऐसा मनुष्य को दिन देखना पड़ता है वास्तव में। अपने ही हाथ से पिता को भी श्मशान में ले गए और पुत्र को भी ले जाना पड़ता है, फिर भी आदमी संसार को भोगने में ही पड़ा रहता है, सोचता है मैं नहीं मरूंगा, ऐसा होता है कभी कभी। और धृतराष्ट्र महाराज तो ऐसे पिता हैं कि उनके सामने ही उनके सौ बेटे मारे गए कुरुक्षेत्र में, जिसके सौ पुत्र मारे गए बाद में जन्म लेने वाले, और पहले के पिता भाई सब मर गए, और वो बिना आंख के है, उसकी आसक्ति देखिए, आंख वाला कितना आसक्त होगा, जो बेटा का चेहरा देखता है, वो तो धृतराष्ट्र कभी देखे ही नहीं थे और फिर भी इतना आसक्त थे। पूछते थे दुर्योधन, क्या तुम्हारा विचार है इस समय, क्या करना चाहते हैं? वो कहता था पिताजी आप पागल हो गए हो, जो पांडवों का धन छीना था, द्रौपदी को अपमानित किया था, तो उसमें कहता आपको पता नहीं है कितना मेहनत से धन कमाया जाता है, पांडवों का धन जुआ में लिया था, जैसे लिया था ना आपने, लौटा दिया, बहुत गलत किया। यदि रोज रोज पैसा न आवे तो हिमालय जैसी राशि भी खर्च होने में देर नहीं लगती है। आपको पता है कितना मेहनत से हम लोग धन कमाते हैं, बस आप युधिष्ठिर को लौटा दिए। तो अच्छा ठीक है, तब क्या किया जाए? तो कहता है फिर से जुआ खेलने के लिए बुलाइए। तो उसी समय वो विदुर जी को भेजे धृतराष्ट्र, जाओ जाओ बुलाओ उसको जुआ खेलने के लिए, इस वर्ष 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। फिर वो लोग जीते ही, पांडव हार गए, गए वन में। तो मैं कह रहा हूं जिसकी आंख नहीं है जन्म से ही, वह अपने बेटा में इतना आसक्त है, कभी फोटो नहीं देखा। तो जो लोग रोज देख रहे हैं उन कितने आसक्त होंगे। तो भाई चले गए, पिता माता सब चले गए, सुहृद पुत्र हताशते विगतम वयः, और आपकी जवानी भी तो गई ना, उम्र तो बीत गया, ते वयः विगत वयम विगत, उम्र भी चली गई। आत्मा च जरया ग्रस्त, शरीर तो बुढ़ापा से ग्रस्त हो गया, पर गेहम उपास से। और आपको पता है आप किसके घर में टिके हुए हैं? आप अपने दुश्मन के घर में रह रहे हैं महाराज, जिन लोगों ने आपके पुत्रों को मारा है, और आपने जिनको कितना दुख दिया, आपको शर्म आना चाहिए इस घर में रहने में, कैसे आप यहां रह गए हैं? पर गेहम उपास से, पर मतलब शत्रु, शत्रु के घर में आप रह रहे हैं। अरे ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा होता है, कैसे आपके मुख में भोजन जा रहा है? और फिर कहत अंध पुराई वो बधिरो, एक श्लोक है अलग से, इसमें पाठ भेद है। एक तो आप जन्म से ही अंधा है, आंख है ही नहीं, और बधिर अभी समय बहरा भी हो गए हैं, जोर से बोला जाता है तब आप सुन रहे हैं। तो आंख पहल जन्म से ही नहीं, कान इस समय चला गया, अंधा पुराई वो बधिरो, मंद प्रज्ञ से सांप्रतम। और महाराज मैं तो ये कह रहा हूं कि इस समय आपकी बुद्धि भी कम हो गई, मंद प्रज्ञा हो गई। पहले आप किसी बात को समझते थे, आप तो बिल्कुल नहीं समझ पाते, मंद प्रज्ञा। और विषीण दंत मंद अग्नि सराग कफमुद, और आपके दांत तो एक भी नहीं है मुंह में, विषीर्ण दंत दांत सब विषीर्ण हो गए। मंद अग्नि, और आपको भोजन भी अब पच नहीं रहा है, जब देखते हैं तब शौचालय में ही जाते हैं, पच भी नहीं रहा। सराग कफम उद्वहन, और कफम उद्वहन अब बहुत ज्यादा कफ निकाल रहे हैं, बुढ़ापा में बहुत कफ आता है, थूकता रहता है हमें, फिर भी सराग, फिर भी आप राग के साथ इस घर में पड़े हुए हैं। हाय हाय, मनुष्य को जीने की कितनी लालसा होती है, इस लालसा में आग लगे। अरे आप भीम के हाथ से दिया हुआ भोजन खाते, जो भीम आपके 100 पुत्रों को मारा है, ये खाने लायक भोजन है? यदि भीम के हाथ से धृतराष्ट्र महाराज खाते हैं तो उनका बहुत भाग्य है कि एक महावैष्णव के मुख हाथ से खा रहे हैं, लेकिन विदुर जी दुख उत्पन्न कर रहे हैं घर छुड़ाने के लिए। अहो मही असी जंतुर जीविताशा दुरत्य, जीविताशा जजा भवान भीमाप वर्जितम पिंड मादते गृहपालो। और आपको पता है भीम आपको कैसे भोजन देता है? जैसे लोग कुत्ते को डाल देते हैं पिंडम और कुत्ता खाने लगता है, उसी तरह से छी छी भीम का दिया हुआ भोजन आप खाते। भीम वास्तव में प्रेम से खिलाते थे उनको, बहुत आग्रह से, अपवर्जित मतलब फेंकते नहीं थे, लेकिन दुख लगने के लिए कह देते। इस संसार में कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो खिलाने वाले की बहुत फ्लैटरी करता है, पूछ डुलाना ये करना, आखिर खाना है लेकिन खूब खुशामद करके खाता है। देखे है ना, डालने के पहले ही कैसे दीन भाव से हो करके पूछ डुलाना है डालन। और इस संसार में एक ऐसा जानवर है हाथी, खाने के लिए उसकी खुशामद करनी पड़ती है, हमने देखा है कई बार आंख से। वो महावत जो होता है हाथी को चलाने वाला, डालता है तो खाता नहीं है, उसको सहलाता है, उसके सूंड को, हाथ को मनाता है कि खा लो, तब खाता है। ऐसे वास्तव में होना चाहिए, कोई मनावे आग्रह करे तब खाना चाहिए। कुत्ता खिलाने वाले की ही चपलूसी करता है, और हाथी जो ऐसा जानवर है कि खाने वाले की चपलूसी करनी पड़ती है, खा लीजिए आग्रह किया, ये किया। भोजन वास्तव में प्रेम का खाना चाहिए, तिरस्कार का नहीं। जहां तिरस्कार हो भूखा रह जाए लेकिन नहीं खाना चाहिए, वो जहर जैसा शरीर में असर करता है, उससे मेडिकल रिएक्शन होता है। भाव का भोजन करना चाहिए। तो यहां पर विदुर जी कह रहे हैं कि हाय हाय, कितनी जीने की आपको गलत लालसा है कि आप भीम के द्वारा फेंके हुए भोजन कर रहे हैं, कैसे गृहपालवत। गृहपाल कुत्ता को कहते जो घर का पालन करता है, रहता है बाहर और घर का पालन करता है, और सब लोग जब खा लेते हैं तब उसको डाला जाता है। अमेरिका में कुत्तों का ज्यादा स्टैंडर्ड है। वही स्वामी जैसा रात इसीलिए ये कथा इधर के लोग नहीं समझ पाएंगे, भारत में जो जन्मे हैं वो समझेंगे कि हाँ किस तरह से कुत्ता तिरस्कार से खिलाया जाता है और बहुत प्रेम से खाता है, और किसके हाथ का दिया हुआ खा रहे हैं। अग्नि निशिष्टो दत्त गरो दारस जोशिता, जिनको जलाने के लिए आपने आग लगाया लक्षा भवन में। यदि धृतराष्ट्र नहीं लगाए थे लेकिन लगाने वाले थे ही, इसलिए आग लगाने का जो पाप है उनको लगा था। इंटेंशन देखा जाता है ना, यदि वो लगाए थे आग भीमसेन, लेकिन धृतराष्ट्र पर पाप लग गया था आग लगाने का। विदुर जी भी कह रहे हैं कि आपने आग लगाया जिनको जलाने के लिए, विष दिया जिनको मारने के लिए, जिनकी पत्नी को अपमानित किया भरी सभा में, जिनका खेत छीना, धन छीना, राज छीना, उनके हाथ से खा करके आप क्यों जीना चाहते हैं। आपको तो शर्म आना चाहिए खाने में, आपने कुछ भी तो छोड़ा नहीं पांडवों को, आप मटियामेट कर देना चाहते थे उनको, और आज वो भगवान की कृपा से जी गए तो उन्हीं के हाथ से आप खा करके जीना चाहते हैं। छी छी, ऐसे जीवन से कोटि कोटि मरण अच्छा है। तद दत्तय रस भी, और इसके बाद भी आप जीना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, लेकिन अब आप जिएंगे नहीं। जैसे पुराना कपड़ा आदमी कितना भी सावधानी से रखे लेकिन फट जाता है बैठने में इधर उधर, वैसे अब आपका शरीर गया, अब जी नहीं पाएंगे। इतना सुनने के बाद तब धृतराष्ट्र पूछते हैं, तो विदुर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वे कहते हैं कि बस निकलिए। तो जो दूसरे के उपदेश से या स्वयं अपने ज्ञान से जैसे भी कृष्ण को हृदय में करके घर से निकल जाता है, उसको नरोत्तम कहते हैं। और जो स्वजनों से अलक्षित कहीं स्थान में देह त्याग करता है भगवान में मन लगा करके, तो उसको धीर कहते हैं। तो विदुर जी कहते हैं कि महाराज आप तो नरोत्तम तो बन नहीं पाए, नरोत्तम बनने के लिए बहुत पहले घर छोड़ देना चाहिए था, कम से कम धीर तो बनिए, चलिए चलिए कृष्ण को हृदय में रख करके आप शरीर छोड़िए। आप तो ये शिक्षा बाद में कल हम कहेंगे किस तरह से दो श्लोक बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है धृतराष्ट्र महाराज को। धृतराष्ट्र महाराज निकल गए, गंधारी भी निकल गए उनके साथ रात्रि के समय हिमालय में तप करने के लिए। वही सब लोग हरिद्वार गए, वो स्थान है हरिद्वार में जहां पर धृतराष्ट्र महाराज भगवान का धाम प्राप्त किए, सिद्धि पाए। इस तरह विदुर जी ने कृपा किया इन पर। तो उनके बाद घर से निकलने का बहुत सुंदर वर्णन किया है शुद्ध गोस्वामी ने, हम कल कहेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते।
भगवते वासुदेवाय। तस्यापि तव देहोयाम् कृपणस्य जिजीविषः परायत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाशशीव गतस्वार्थमिमं देहाम् विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञात गतिर्जह्यात् सवय धीर उदाहृतः यः स्वकात् परतो वेह जात निर्वेदयात्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः। श्लोक 24। गरुदाराश्च जोषितः कृतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैरसुभिः कियान् तस्यापि तव देहोऽयम् कृपणस्य जिजीविषो परायत्यमिच्छतो जीर्णो जरया वाससीव गतस्वार्थमिमं देहाम् विरक्तो मुक्तबन्धनः विज्ञात गतिर्जह्यान् सवय धीर उदाहृतः यः शोकात् परतो वेह जात निर्वेदयात्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः तस्यापि तव देहोऽयम् कृपणस्य जिजीविषः परायत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाशशीव गतस्वार्थमिमं देह विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञात गतिर्जह्यात् स्वय धीर उदाहृतः यः स्वकात् परतो वेह जात निर्वेदयात्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः तस्यापि तव देहोऽयम् कृपणस्य जिजीविषः परायत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससीव गतस्वार्थमिमं देहाम् विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञात गतिर्जह्यात् स्वय धीरा उदाहृतः यः स्वकात् परतो वेह जात निर्वेदयात्मवान् हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः तस्य उसका अपि भी तव आपका देह देह आयाम जो मेरे सामने है, आप तो इसको कभी देखे नहीं हैं लेकिन मैं देख रहा हूं। कृपणस्य दीन का जीजी विषह जिसे जीने की इतनी लालसा है उसका, परायती दूर हो रहा है, अनिच्छतः यद्यपि आप नहीं चाहते हैं, जीर्णः जीर्ण हो चुका है, जरया जरा द्वारा बुढ़ापा के कारण, वाससी वस्त्र की वस्त्र इवा जैसे। श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को शिक्षा दे रहे हैं। जैसे कल आप लोगों ने सुना, बता रहे थे कि आप सब कुछ खो चुके हैं, आपके पुत्र मर गए, आपके पिता पितामह संबंधी भाई सभी काल के गाल में चले गए, और फिर भी आप शत्रु के घर में पड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि हम जीवित रहें। धिकार है महाराज आपकी इस बुद्धि पर, इतना अज्ञा आपको नहीं होना चाहिए। और भी दुख लगने वाली बात कहे कि आप भीमसेन के हाथ से खा रहे हैं, ये ठीक नहीं। जिस व्यक्ति ने आपके 100 पुत्रों का वध किया और वो आज खिला रहा है, आपको परोस रहा है, छी, ऐसे जीवन से कोई लाभ नहीं। आपको मर जाना ठीक है, शरीर छोड़ देना ठीक है, लेकिन इतना गिर करके इतना लाचार बन करके खाना ठीक नहीं होता। वास्तव में किसी व्यक्ति को चाहिए कि बहुत दीन बन करके कहीं न खाए, कहीं न किसी का कुछ ग्रहण करे। धृतराष्ट्र महाराज की अजीब दशा थी, एक दिन सारे पुत्र मर गए और आकर युधिष्ठिर महाराज के आश्रय में रह रहे हैं और वही खिला रहे हैं पिला रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कभी ऐसा नहीं माने कि धृतराष्ट्र महाराज हमारे शत्रु हैं, वे तो अपने पिता के समान ही उनका आदर करते थे, पांडु महाराज के समान, क्योंकि वो तो आजाद शत्रु हैं, उनके दृष्टि में तो कोई शत्रु जन्मा ही नहीं। जैसे आगे वर्णन आएगा कि धृतराष्ट्र महाराज चले गए हिमालय, तो महाराज युधिष्ठिर बहुत रो रहे थे, हमारे पिताजी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। नारद जी आए उनके पास रो रहे थे, तो नारद जी ने कहा कि किसी के लिए चिंता मत करो राजन, यह प्रसंग कल आएगा, नारद जी की शिक्षा युधिष्ठिर महाराज। लेकिन अभी हम लोग आज विदुर जी की शेष शिक्षा पर विचार करेंगे। तो विदुर जी बता रहे हैं कि आपका इस तरह से दीन हो करके गिर करके किसी का भोजन नहीं करना चाहिए, और जिनका आपने वध करने का प्रयास किया, जिनकी पत्नी को भरी सभा में आपने तिरस्कृत किया, जिनका राज्य छीना, सब कुछ किया, उनके हाथ से खा करके आप क्यों जीना चाहते हैं? दोनों तरह से आपको यहां नहीं रहना चाहिए, यहां नहीं भोजन करना चाहिए। आपने इनको मारने का प्रयास किया और इन लोगों ने तो आपके पूरे परिवार को ही साफ कर दिया कुरुक्षेत्र में। तो केवल एक दृष्टि से भी आप विचार करें तब भी आपको यहां नहीं खाना चाहिए, यह नहीं रहना चाहिए। लेकिन दो दो कारण है फिर भी महाराज आपको क्या हो गया? तस्या पिता देहो यम कृपण स जजे विषो, आप इतना कृपण हैं, हद हो गई। यहां कृपण का मुख्य अर्थ है
अविचारित पाचक, कौन व्यक्ति भोजन बना रहा है, कौन खिला रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को ये जरूर विचार करना चाहिए। जहां तहां नहीं खा लेना चाहिए, बल्कि भोजन न मिले एक दो दिन उपवास कर ले, लेकिन बहुत गिर करके नहीं भोजन करना चाहिए। धृतराष्ट्र महाराज कभी विचार ही नहीं कर रहे थे कौन खिला रहा है कौन दे रहा है भोजन, बस खा लेते थे। किस लिए? जीजी विषो, क्योंकि जीने की उनकी लालसा थी, जीना चाहते थे। प्रश्न यह होगा, वही सभी जीना चाहते हैं, लेकिन क्यों क्यों जीवित रहे? सभी से प्रश्न पूछा जा सकता है, जीना जरूरी क्यों? कुछ लोगों का, कुछ क्या संसार के सभी लोगों का यही भाव है कि जीवित इसलिए रहें कि और भोग भोगेंगे, खाएंगे पिएंगे पहनेंगे घूमेंगे। अभी तो हम कुछ घूमे नहीं, अभी तो हम कुछ खाए नहीं, अभी तो सारी फर्स्ट क्लास की गाड़ियां कार ऐसे ही रह गई, मैं उनमें घूमा नहीं, इधर नहीं गया उधर नहीं गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं गया उधर नहीं घूमा, एक जगह बंधा है। ऑस्ट्रेलिया घूम कर अमर हो जाएंगे। एक व्यक्ति हमको ऐसे बता रहा था, इसी अमेरिका महाराज, में ऑस्ट्रेलिया नहीं गया। बाप रे, इतनी आसक्ति है इस प्राकृत जगत को देखने की, इसको लाचार कहते हैं, दीन, हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो क्यों जीवित रहा जाए? भागवत में इसका उत्तर दिया गया है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो जस्चेह कर्म भी। जीना चाहिए तत्व जिज्ञासा के लिए, सार क्या है, सत्य क्या है, अर्थात भगवान सत्य है, जीव सत्य है, और भगवान और जीव के साथ जो संबंध है वो सनातन है, सत्य है। तो भगवान को जानने के लिए और उनसे प्रेम करने के लिए जीना चाहिए, जीने का यही फल है। नहीं तो भागवत में तो कई जगह लिखा गया है, वो तरवह किम्न जीवंती, क्या वृक्ष नहीं जीवित रहते हैं, जीने से क्या फायदा हुआ? उस श्लोक की टीका में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलकत्ता में वो हावड़ा एक स्थान है, वहां पर एक बोटानिकल गार्डन है, वहां पर 2000 वर्ष पुराना एक बरगद का वृक्ष है। तो 2000 वर्ष तक जीवित रहा, तो मान लीजिए कोई ज्यादा दिन जीवित रहे तो जी करके करना क्या चाहता है? जीना चाहिए भगवान को समझने के लिए, समय लगता है भगवान को समझने में और प्रेम उत्पन्न करने में। नार्थो जस्चेह कर्म भी यह न अर्थ, बहुत कर्म करके भोग कमाना या स्वर्ग कमाना ये जीने का लाभ नहीं है। जीने का लाभ है भगवान का भजन करना, समझना। धृतराष्ट्र महाराज के जीवन में भजन का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, तो भक्तों को ही भूंज देना चाहते थे, जला देना चाहते थे, मारना चाहते थे, भजन क्या करेंगे? और भगवान कृष्ण जाकर भीख मांग रहे थे कि संधि कर लीजिए, यह कीजिए, कुछ नहीं माने, भक्ति क्या करेंगे? विदुर जी कहते हैं कि आप इतना गिरे हुए हैं, इतना दीन बन रहे हैं, कृपणस्य जिजी विश्व, और जीना चाहते हैं, लेकिन फिर भी तव अयम देह करायती, आपका यह देह अब परा रहा है, भाग रहा है। परायती का अर्थ होता है परा जाना, हम लोग हिंदी में कहते हैं भाग जाना। यद्यपि आत्मा देह को नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन देह आत्मा को छोड़ने की तैयारी कर देता है। कोई कोई बिरले योगी होते हैं भक्त जो देह को छोड़ते हैं, और बाकी लोगों
को तो ऐसा होता है कि आत्मा ही देह छोड़कर चला जाता है, देह ही छोड़कर चला जाता है। देह अयम देह तो परयति, आपका देह भाग रहा है और वो आत्मा का साथ नहीं देगा। आत्मा तो इसी में रहना चाहता है, चाहे बूढ़ा हो शरीर, चाहे कुछ भी हो, इसी में रहना चाहता है। पर शरीर धीरे धीरे आत्मा को छोड़ने की तैयारी करता है। तो मरते दम तक प्रत्येक जीव आत्मा तो चाहता है कि मैं इसी शरीर में रहूं, लेकिन शरीर नहीं काम करता, धीरे धीरे पैर हाथ इत्यादि खराब होते होते छोड़ देता है। और वो हाय हाय करता है, रोता है कि हाय रे मेरा देह, मेरा देह, ये मैं देह है। तो कुछ भी करे व्यक्ति इस जीवन में, चाहे कितना भी नीच कर्म करे, गिर करके लाचार हो जाए, लेकिन देह तो जाएगा ही। और इसी देह को पोषने के लिए आप भीमसेन के हाथ का भोजन कर रहे हैं। जीना चाहते हैं फिर भी जी नहीं पाएंगे, क्योंकि जराया जीर्ण, जरा के द्वारा आपका शरीर जीर्ण हो गया है। अयम देह से विदुर जी कह रहे हैं कि महाराज ये आपका देह है। अरे मैं पहले देखा था और इस समय देख रहा हूं, आप तो देख ही नहीं सकते, न आप अपना मुख ऐनक में देखेंगे न। तो धृतराष्ट्र महाराज तो केवल छूते होंगे, वो देख करके थोड़े समझेंगे कि जवानी में उनका फोटो कैसे था और बुढ़ापा में कैसा हो गया। आजकल के लोगों को तो रखना चाहिए अपने बचपन का भी फोटो, और कम से कम प्रत्येक साल का रखना चाहिए वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, देखिए शरीर की क्या दशा हो गई। कैमरे का यह लाभ जरूर है आत्म समीक्षा करने के लिए। बेटर तो यह है कि महीने महीने का फोटो रख। गीता में कहते हैं कि चार चीज का अनुदर्शन, प्रतिदिन और कंटिन्यूअस दर्शन करने चाहिए। किस चीज का? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, में क्या दुख और दोष है इस पर विचार करते रहना चाहिए। यह ज्ञान का एक साधन है, फिर हमें ध्यान भगवान बोलते हैं, ऐसे ज्ञान बना रहेगा। कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं कि कथा सुनते हैं हम लोग तो ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान टिकता नहीं, किस उपाय से टिकेगा? तो भगवान ने 19 उपाय बताया है गीता में ज्ञान टिकने का। अमानित्वम, अदम्भित्वम, ये सब ज्ञान के साधन बताए। वो करने पर ज्ञान एकदम बना रहेगा कंटिन्यूअस। उसमें भगवान का श्रवण कीर्तन भी है। तो यह देखने की आवश्यकता है। विदुर जी जो अयम तव देह कह रहे हैं, आपका यह देह, तो अयम शब्द बता रहा है कि विदुर जी हाथ से उनको इशारा कर रहे हैं, लेकिन विदुर जी के इशारा को तो देख नहीं रहे हैं, केवल ओरल रिसेप्शन, केवल वहां विजन तो है नहीं, केवल कान से सुन रहे हैं। मतलब जो व्यक्ति अपने शरीर को, जवान शरीर को देखा ही नहीं, बुढ़ापा में भी नहीं देख रहा है, उसको उपदेश किया जा रहा है कि आपका यह देह परायती, ये भाग रहा है, ये क्षीण हो गया है, बुढ़ापा से ग्रस्त हो गया है, आप तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन महाराज मैं तो आपके साथ ही रहा हूं, सब देख रहा हूं। अब लाख गिरिए, इतना गिड़गिड़ाइए, भोजन कीजिए किसी के यहां, लेकिन जी नहीं पाएंगे। अब ये शरीर आपका बहुत दिन नहीं चलेगा। परायती, यह वास्तव में धृतराष्ट्र महाराज के लिए उपदेश नहीं है, यही आम लोगों के लिए है। एक बार मैं कथा कहा था, वसुदेव जी कंस को समझा रहे हैं, कंस नहीं समझा। एक भक्त हमसे वृंदावन में पूछा, महाराज जब कंस समझा ही नहीं तो ये इस उपदेश को भागवत में वेदव्यास जी ने क्यों रखा? उन्होंने कहा आपके लिए। श्रवण कीर्तन करने को कहा जाता है, तो ये सब चीज हम लोगों के लिए वास्तव में है। विचार करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को कि हमारा शरीर पहले क्या था, अब क्या हो गया और एक दिन क्या होगा। जिस दिन आत्मा छोड़ करके चला जाएगा, उसके बाद शरीर की तीन गति में से एक गति होगी, या तो कब्र में जाएगा, नहीं अग्नि में जलाया जाएगा या फेंक दिया जाएगा कहीं नदी में या पहाड़ में। तो जमीन में डाल दिए जाने के बाद एक कृमि हो जाएगा, कीड़े सब शरीर ही सड़ करके कीटमय हो जाएगा, कृमि। और आग में जलाए जाने पर भस्म, और गंगा जी में या कहीं फेंक दीजिए कछुआ खा जाए, कहीं कोई सियार गिद्ध खा जाए तो उसका बीट बन जाए, मल बन जाए। तीन में से एक गति तो होगी। आज चाहे इसकी जो भी संज्ञा हो, इसकी संज्ञा ब्राह्मण, साधु, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, जो कुछ भी संज्ञा हो, लेकिन लास्ट में क्या संज्ञा होगी? कृमि बीट भस्म संगीत। आज राजा की संज्ञा रहेगी, लेकिन कल इसको कृमि संज्ञा लेना है, ये शरीर की दशा होगी। जो व्यक्ति शरीर में रह रहा है तो वह इस शरीर के कंडीशन पर विचार नहीं करेगा, तो उसके लिए कौन दूसरा विचार करेगा? हम जिस घर में रह रहे हैं, अब घर गिर रहा है, इसका मोर्गेज देना है, क्या करना है, खुद हम ही नहीं सोचेंगे तो दूसरा कौन सोचेगा? उसमें चलिए घर पुराना हो गया, सारा पानी भीतर आने लगा, नल खराब हो गया, बिजली खराब हो गई, यह खराब हो गया, ये खराब हो गया, अभी गिरेगा तो गिरने से पहले निकल कर भाग जाना चाहिए ना उस घर में से, चाहे उसको रिपेयर करना चाहिए। पर ये घर तो ऐसा है कि अभी रिपेयर करने से नहीं चलेगा, तो सीधा शिफ्ट ही करना पड़ेगा, सीधा दूसरा। इस पर विचार करना चाहिए। विदुर जी कह रहे हैं कि आप जीने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं महाराज, लेकिन अब जी नहीं पाएंगे, अब इतना लाचार मत होइए। तब महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि तो विदुर जी हम क्या करें, आप हमें उपदेश दीजिए हम क्या करें। तो विदुर जी कहते हैं महाराज आप भीड़ बनिए, भीड़ बनिए। भीड़ का अर्थ होता है जो धैर्य धारण करे, जीवन का लाभ प्राप्त करने के लिए यहां जो भी सुख दुख हो उसको सहे, उसको भीड़ कहते हैं। महाराज धृतराष्ट्र ने पूछा कि हम क्या करें, विदुर जी ने कहा कि भीड़ बनिए। तो फिर महाराज धृतराष्ट्र पूछे कि भीड़ किसे कहते हैं, तब वो भीड़ की परिभाषा बता रहे हैं, डिफिनेशन बता रहे हैं। गत स्वार्थ निमन देहम विरक्तो मुक्त बंधन, थोड़ा कम कीजिए, आइए थोड़ा सा कम कीजिए। गत स्वार्थ निमन देहम विरक्तो मुक्त बंधन हम अविज्ञात गतिर्जह्या सवय धीर उदाहृत। जो व्यक्ति जस और धर्म आदि से शून्य इस देह को त्यागता है, ऐसे स्थान में जहां पर उसके स्वजन न जाने और जो परिवार से दूर हो जाता है, तथा यह मैं हूं और यह मेरा का अभिमान त्याग देता है, वह व्यक्ति धीर उदाहरण है। वो धीर कहा गया, धीर कहा गया। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान धीर शब्द बताए हैं। देहेनेस्मिन जथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते। अरे घर द्वार छूटेगा ये क्या बड़ी बात है, एक दिन देहांतर होगा, देह छोड़ना पड़ेगा, एक देह से दूसरे देह में जाना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति इसमें कोई दुख नहीं मानता है, जैसे बचपन बीत गई जवानी आ गई तो कोई दुख नहीं हुआ, जवानी बीत गई बुढ़ापा आ गई तब भी कोई दुख नहीं हुआ, आत्मा को दुख नहीं होता है, बल्कि सोचता है मेरा अनुभव बढ़ रहा है। और हाँ, कोई ना कोई गुण का आरोप कर लेता है व्यक्ति। एक बार हम लोग एक व्यक्ति को प्रीचिंग कर रहे थे, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। एक लड़का था 15-16 वर्ष का, वो बता रहा था कि भगवान का नाम लीजिए, ये नियम है, ये चार नियम पालन कीजिए। तो एक व्यक्ति थे, उनकी दाढ़ी लंबी लंबी थी और पकी हुई थी, तो वे कहते हैं तुमको बोलने में शर्म नहीं आती है, तुम्हारे जैसे हमारे पुत्र का पुत्र हुआ है, नाती है, पौत, और हमको तुम सिखाते हो, क्या ऐसे ही हमारी दाढ़ी पकी है, ऐसे ही हमारी दाढ़ी पकी है। दूसरा एक लड़का था जोकर टाइप का, मेरे साथ रहता था, वो कहा कि ऐसे ही दाढ़ी पकी है, क्या समझते हो, ये ज्ञान के मसाला से पकाए हैं, ऐसे ही थोड़े दाढ़ी पकी है, अब तो और बमक गए। अरे ज्ञान हो चाहे न हो, दाढ़ी तो ऐसे पक ही जाएगी, है ना। व्यक्ति कख भी न पढ़ा हो, कुछ भी नहीं, लेकिन ये तो काल से दाढ़ी पक ही जाएगी, कि दाढ़ी पक गई है इसीलिए वो ज्ञानी हो गया है, यह बात नहीं है। तो कहते ऐसे ही दाढ़ी नहीं पकी है, ये कहिए कि बहुत दिन के हैं, लेकिन बहुत दिन का होने से थोड़े ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान तो ग्रहण करने से, पढ़ाई करने से होता है ना। तो धीरे शब्द यहां बताया जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति यह देखता है कि मेरा देह है गत स्वार्थ हो गया, गत स्वार्थम इमम देह, स्वार्थ का क्या अर्थ है, स्व अर्थ स्वार्थ, स्व का अर्थ है अपना और अर्थ का अर्थ है प्रयोजन, इस देह से कुछ स्वार्थ कमाना होता है, क्या स्वार्थ है, यश और दया नहीं, यश और धर्म इत्यादि, इसको स्वार्थ कहा गया। धर्म का अर्थ है भगवान की भक्ति करना, भगवान की आज्ञा का पालन करना, इसी देह से भजन होता है, लेकिन अतिशय बुढ़ापा जब आ जाती है तो व्यक्ति अब भजन भी नहीं कर पाता, तो धर्म शून्य हो जाता, और परोपकार आदि करता है इस देह से तो उसको यश प्राप्त होता है, लेकिन बुढ़ापा में यह देह परोपकार से या भगवत भजन से शून्य हो जाता, कोई काम नहीं करता है, न तो घर का काम कर पाता है, न भजन का काम, कुछ नहीं, तो इसको गत स्वार्थ कहते हैं। विश्वास रखिए, वास्तव में तो परम सत्य है कि एक दिन शरीर की यह दशा हो जाएगी कि कुछ भी काम लायक नहीं रह जाएगा, इसको गत स्वार्थ कहते हैं, स्वार्थ ही। जवानी में तो कुछ भी है, कुछ आदमी कमा रहा है, खा रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन बुढ़ापा में गत स्वार्थ। तो जब कोई व्यक्ति यह देख लेता है कि गत स्वार्थम इमं देहम, अब हमारे देह से कुछ भी नहीं होगा, तो उस समय वह विरक्त हो जाता है, उस समय देह की दशा पर विचार करके उसको चाहिए कि विरक्त हो जाए। विरक्त का यहां अर्थ है विगत रक्त संबंध, परिवार से संबंध तोड़ लेता है, इसको विरक्त कहते हैं। रक्त संबंध है ना, खून का संबंध, लोहू का संबंध है, सबके साथ ये बहुत बड़ा बंधन है। विरक्त का एक यह भी अर्थ है कि जिनके साथ रक्त संबंध है उनसे नाता तोड़ ले, विरक्त हो जाए, अथवा अनासक्त और मुक्त बंधन। बंधन का अर्थ होता है अभिमान, अभिमान का संस्कृत में अर्थ होता है अभिमति, मान्यता। प्रत्येक जीव मानता है कि यह मैं हूं और यह मेरा है, मेरी ये इज्जत है, मैं ये आदमी हूं, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरा धन है, मेरा घर है, मैं यह हूं, इसको अभिमान कहते हैं। अभिमान का अर्थ प्राइड नहीं होता है, अभिमान का अर्थ होता है मान्यता, हम मन में मानते हैं कि मेरा है, ये हमारा है। तो मुक्त बंधन का अर्थ है कि उस समय वह व्यक्ति यह भावना छोड़ देता है कि यह मेरा है और यह मैं हूं, मुक्त बंधन। एक तो विरक्त और मुक्त बंधन हो करके, और अविज्ञात गति जह्य समय धीरा उदाहरता, वह चला जाता है किसी अलक्षित स्थान में, अविज्ञात गति, न विज्ञाता गतिर जस्य स, उसकी गति कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, ये स्वजनों को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं तो अगर मान लीजिए कोई बेटा है और पता लगा लेगा कि हमारे पिताजी वृंदावन में दुख भोग रहा है, तो तुरंत वहां से उठा करके इधर ला देगा। इसलिए बताना नहीं चाहिए, अविज्ञात गति, कहीं एकांत स्थान में, हिमालय में या धाम में जा करके इस देह को जो छोड़ देता है उसको धीर कहा गया है। देह छोड़ते समय ये हमेशा बताया गया है कि परिवार से अलग रहना चाहिए। देह छोड़ते समय तो धीर की परिभाषा विदुर जी बता रहे हैं, उसको धीर कहते हैं, जो इस तरह से अभिमान छोड़ दे, अभिमति छोड़ दे कि मेरा है वो मेरा है। नहीं अभिमान छोड़ेगा तो कहीं एकांत में जा भी नहीं पाएगा ना। अब तो भावना है कि ये मेरा घर है, बहुत सुंदर है, सारा सब कुछ परफारनालिया है घर का, कितना सामान ला करके होम डिपो से रखे हैं होम डिपोट और फर्नीचर सोने का ऐसा, तो तीर्थ में जाना चाहेगा आदमी। वहां गया कहीं आसन भी डाला तो दूसरा आदमी कुत्ते की तरफ डालता है, यहां क्यों उधर जाओ। जब वृंदावन में ऐसा होता है तो जिसको अभी अभिमति है कि मैं एक धनी व्यक्ति हूं और मैं अमेरिका से आया हूं, मैं इतना सुखी हूं, मेरे पुत्र इतने ओबेडियंट हैं और यहां ये हमारा तिरस्कार कर रहा है, उसी दिन वो उठेगा भाग जाएगा, दुनिया नहीं रहेगी। लेकिन इसको कहते हैं मुक्त बंधन। बंधन यही है वास्तव में, जो उपाधि है कि मैं यह हूं, यही बांधा हुआ है जीव को, बंधन। तो मुक्त बंधन होकर के और अपने स्वजनों से अलक्षित स्थान में अलक्षित तरीके से जो इस देह को छोड़ देता है उसको धीर कहा गया। सवय धीर उदाहरता, उदाहरता शब्द का अर्थ है कि मैं नहीं कह रहा हूं, सभी महात्मा जन कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को धीर कहा गया, धीर कहा जाता है। अब नरोत्तम शब्द की का डिफिनेशन दे रहे हैं, कौन व्यक्ति फर्स्ट क्लास का है इस संसार में, किसको कहा जाएगा कि मोस्ट सक्सेसफुल व्यक्ति है, उसको बता रहे हैं। यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेदयात्मवान हृदय कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत स नरोत्तम। जो व्यक्ति चाहे स्वयं ही स्वकात, स्वकात का अर्थ बिना किसी के सिखाए स्वयं ही ज्ञान हो गया पढ़ने से या चाहे अनुभव से, जैसे भी स्वयं अपने से अथवा परत दूसरे के सिखाने से, दूसरे के कथा से, प्रवचन से, उपदेश से, स्वयं अथवा दूसरे को उपदेश से जिस व्यक्ति के हृदय में जात निर्वेद वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, निर्वेद का अर्थ वैराग्य, और निर्वेद का मुख्य अर्थ है कि अब काम धंधा ये सब ड्यूटी से उटी से मन हट जाता है, परिवार आदि से उसकी ममता समाप्त हो जाती है, चाहे स्वयं हो अथवा दूसरे के उपदेश से हो, और उस समय वह व्यक्ति आत्मवान बनता है, मन को वश में रखता है और हरिन हृदय कृत्वा श्री कृष्ण को, भगवान को हृदय में ले करके गेहात प्रव्रजेत और घर छोड़ करके चल देता है। सवई नरोत्तम स नरोत्तम प्रव्रजेत स नरोत्तम, फर्स्ट क्लास का आदमी वही है जो घर छोड़ करके चल दे कैसे घर छोड़ करके चल दे, किस रूप में, हरिम हृदय कृत्वा, हृदय में कृष्ण को लेकर चल दे। इसका मतलब है कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति घर छोड़ देता है, चाहे स्वयं अथवा दूसरे के सिखाने से, मन को बस में रखा है, केवल उसके सामने वो कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण को पाना चाहता है और घर गृहस्थी के झंझट से दूर हो जाता है, वही इस संसार में फर्स्ट क्लास का आदमी है, नरोत्तम, मनुष्यों में सबसे अच्छा व्यक्ति वही। ये श्रीमद् भागवतम निष्कपट धर्म का उपदेश करते हैं, इसमें फ्लैटरी नहीं की गई है, चापलूसी नहीं की गई है कि लोग अच्छा माने किसी को उपदेश को, और दुनिया की दृष्टि में भले किसी को कोई फर्स्ट क्लास का समझे, कुछ भी समझे, लेकिन भागवत में तो फर्स्ट क्लास उसको कहा गया है जो कृष्ण को पाने के लिए घर का काम धंधा छोड़कर भाग जाए, हृदय में कृष्ण बस है, अब उनके अलावा उसको कुछ सुहा ही नहीं रहा है, वो फर्स्ट क्लास का आदमी। बहुत प्रखर उपदेश है भागवत का, गृहस्थों पर तो ऐसा लगेगा जैसे कि उनको डंडा से मारा जा रहा हो, ऐसा कथा है कि सताना है क्या है। आगे धृतराष्ट्र महाराज को विदुर जी कहते हैं, महाराज फर्स्ट क्लास का तो आप बन नहीं पाए, तो कम से कम सेकंड क्लास धीर तो बनिए, चलिए अब चलिए। फर्स्ट क्लास धीर तो उसको कहा गया जो देख ले कि शरीर काम का नहीं है, तब भगवान का भजन करे और मरने की तैयारी करे शरीर छोड़ने की, तो धीर है। लेकिन फर्स्ट क्लास का व्यक्ति नरोत्तम वह है जो दूसरे के सिखाने से अथवा स्वयं ही भगवान को पाने के लिए चल दे, भजन करने के लिए घर द्वार छोड़ करके। तो धृतराष्ट्र महाराज तो नरोत्तम बने नहीं, तो उनका तो जीवन ऐसे ही बीत गया, लेकिन धीर बन सकते थे। सीता श्रीधर स्वामी जी टीका में लिखते हैं कि आप तो नरोत्तम तो नहीं हो पाए, तो कम से कम धीर बनिए, और प्रत्येक आदमी थोड़े फर्स्ट क्लास का बन पाएगा, जितनी जिसकी स्थिति है उतना तो बनना चाहिए ना। चलिए कम से कम घर गृहस्थी में रहते हुए ही भजन किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। लेकिन यह फर्स्ट क्लास का नहीं है, घर गृहस्थी में रहते हुए भगवान का भजन करना है। घर गृहस्थी को तिलांजलि देकर 24 घंटा कृष्ण का भजन करना, ये फर्स्ट क्लास का काम है। स्टैंडर्ड भागवत में ये स्थापित किया गया है। अब हम जितना भी बढ़े अपनी शक्ति के अनुसार ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड ये है, सर्व त्याग करी करे कृष्ण का भजन, सर्व त्याग करके कृष्ण का भजन कर। घर गृहस्थी में बहुत काम करने पड़ते हैं दूसरे उद्देश्य से, परिवार को चलाने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, पर भगवान का स्मरण कीर्तन भजन आदि बाधित होता रहता है, छूटता रहता है। वैष्णवों की बात कर रहे हैं, जो वैष्णव हैं भगवान का भजन करते हैं, उनका भी भजन वास्तव में गृहस्थी के कारण बाधित होता रहता है, ये तो प्रत्येक गृहस्थ का अनुभव है। लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में निर्वेद उत्पन्न हो गया, अब उसे घर गृहस्थी या बाल बच्चा ये सब अच्छे नहीं लगते हैं, भगवान के लिए व्याकुल हो गया और उनको हृदय में रख करके चल दे, हृदय में रखने का मतलब है कि भगवान की प्राप्ति के लिए ही चल दिया रात दिन चिंतन करते हुए। हरिम हृदय कृतवा, हरि को हृदय में करके, हृदय में कर, हृदय में बसा कर धसा करके चल दे। कहीं भी कोई व्यक्ति जाता है तो किसी न किसी को हृदय में वो ढो करके जाता है, कहीं जाता है, चकार चला रहा हो कुछ भी, जिसका स्मरण हो रहा है, जिसे मिलने की लालसा है, जिसको कुछ देने की, सुखी करने की, तो माना जाएगा कि उसी को हृदय में लेकर तो चल रहा है। आदमी कार में बैठता है लेकिन उसके हृदय में पूरा परिवार बैठा हुआ जाता है, क्योंकि वो अकेले कार चलाते हैं ना, कार पुल में मना करते हैं अकेले मत चलो, दो आदमी चलते हैं। लेकिन मान लीजिए अकेले ही जा रहा हो व्यक्ति, तो पूरे परिवार को हृदय में बसाया जाता है, कुछ न कुछ चिंतन करते हुए जाता है, चाहे न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी आवे, चाहे न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क जाए, चाहे इंडिया जाए, इंडिया से यहां आवे, यहां से कहीं जाए, कितने लोगों को हृदय में धारण करके व्यक्ति घूम रहा है। लेकिन फर्स्ट क्लास का मनुष्य वह है जो कृष्ण को हृदय में धारण करके और ये सब काम धंधा छोड़कर चल मन वृंदावन में रहिए वो फर्स्ट क्लास का व्यक्ति है। यहां एक बात आश्वासन की है, विदुर जी कहते हैं कि आप फर्स्ट क्लास का तो नहीं बन पाए दरोत्तम नहीं बन पाए, तो धीर तो बनिए, चलिए 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 हिमालय। कोई आपका स्वजन युधिष्ठिर आदि न जाने और आप चलिए गंगा जी के तट पर, उधर शरीर त्याग दीजिए हिमालय में, मैं रहूंगा साथ में। अब आपका शरीर कितना दिन जीवित रहेगा। और ये जो उपदेश कर रहे थे धृतराष्ट्र महाराज को, उसके सातवें दिन वो शरीर छोड़ दिए महाराज धृतराष्ट्र, इसी में भागवतम में लिखा हुआ ले जा रहे। यह एक महाभागवत के द्वारा बोला हुआ श्लोक है, भगवान जमराज के द्वारा जो विदुर जी के रूप में आए। अपनी अपनी मान्यता के अनुसार लोग जीवन की सार्थकता चाहे कुछ भी समझें, लेकिन विदुर जी का यह स्टेटमेंट है कि नरोत्तम वो है जो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। ऊपर वाले में देह छोड़ने की बात आई है और इसमें गेह छोड़ने की बात आई है। देह छोड़ना आसान है लेकिन गेह छोड़ना आसान नहीं है जीते जी। वास्तव में सत्य बात है, आदमी मर जाता है, बूढ़ा होकर के मर जाता है, संतोष हो जाता है, लेकिन जवानी में ही घर छोड़ करके चल दे ये नहीं हो सकता है। छोड़ने की बात क्या है, दो दिन अलग होने पर ही सेल फोन से बातें करते हैं, ऐसे लगता है हाय 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 क्या हो गया। पहले तो फोन था, घर में था, थोड़ा वियोग सह भी लेते थे, अब तो एक एक मिनट की अवस्थिति बताते हैं, मैं यहां हूं तो वहां हूं तो यहां हूं तो यहां हूं। माया और बढ़ रही है, वास्तव में बहुत जोर से बढ़ रही है ना चारों तरफ कहीं। अरे बाथरूम में बैठा हुआ है, टॉयलेट में, वहां भी फोन लगा रहा है। कभी तो चैन से रहो भाई, क्या ये बात है घर में आंसरिंग मशीन बोल रही है, स्वयं सेल फोन लिए हैं। स्वजनों से, खासकर परिवार के लोगों से जितना दूर रहने का प्रयास करे वो अच्छा है कैसे हम घर में रहते हुए भी कुछ समय उनसे दूर रहना चाहिए, भगवान के भजन जप के समय, पढ़ते समय। बच्चों को भी हटाना चाहिए, नहीं तुम चलो। ये सब शास्त्र के उपदेश हैं, वास्तव में बिल्कुल सत्य बात कही जा रही है। आज का मनुष्य भले इसको न पचा पावे, डाइजेस्ट न कर पावे, लेकिन ये बहुत उत्तम बात। अंततः तो एक दिन सब कुछ छूट ही जाता है, तो क्यों नहीं कृष्ण के लिए इसको छोड़ा जाए। ऐसे गरिष्ठ भागवत में आप देखेंगे कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों का खूब वर्णन। इसीलिए कभी कभी गृहस्थ लोग भागवत नहीं सुनना चाहते, कहते नहीं महाभारत सुनाइए भागवत की आँच बहुत ज्यादा है, प्रखर है। इसमें घर गृहस्थी की बहुत निंदा की गई। ऐसे प्रशंसा भक्ति की गई है, लेकिन घर गृहस्थी वास्तव में बाधक है कृष्ण के भजन। यदि घर गृहस्थी में न हो, व्यक्ति भगवान के भजन में हो, तो कहीं भी तीर्थ में जब मन करे घूम सकता है, जा सकता है, आ सकता है, जा सकता है। गृहस्थ व्यक्ति घूम नहीं सकता है। कभी छुट्टी हुई इधर उधर टूर में चला गया, लेकिन ये कहीं जगह काम करना है, रहना है, करना है, ऐसे भी बहुत भारी बंधन है। हमसे एक व्यक्ति बाल्टीमोर में कहता था, महाराज अब सालों भर घूमते ही रहते हैं, तो तब क्या करें, तो आप पर कोई जिम्मेवारी नहीं है, वो जिम्मेवारी घूमने की है और क्या है। एक दिन यहाँ रहे, दो दिन वहां रहे, चार दिन वहां रहे, भगवान की बातें कहते हैं, भक्तों का संग करते हैं। गृहस्थ होने पर तो एक जगह बंधन है, देखते कितना मंडे से फ्राइडे तक कितना बंधन है, और सैटरडे संडे को दो दिन छुट्टी मिलती है, लेकिन दो दिन आराम करने में ही रिलैक्स थोड़ा फील करते हैं, लेकिन फिर मंडे आ जाते हैं, फिर करना है, करना है। हम लोगों के लिए कोई अंतर नहीं, मंडे हो चाहे संडे हो चाहे कुछ भी, कोई ऐसा बहुत बड़ा बंधन नहीं है, यही करना है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं फर्स्ट क्लास का हूं, मैं तो ये काम धंधा छोड़ चुका हूं, लेकिन हरि को हृदय में नहीं लिया ना, असली चीज तो हुआ नहीं। नहीं, असली चीज वो है वास्तव में, भगवान को हृदय में जो ले लिया, रात दिन केवल कृष्ण के लिए ही तरस रहा है, तब वो नरोत्तम बनता है। तो ये जीवन की सफलता है, भाग्य है उन लोगों का। अब इस स्टैंडर्ड से मिला करके देखना चाहिए, जो व्यक्ति जितना कृष्ण में आसक्त है उतना भाग्यशाली है। कभी कभी तो कुछ महात्माओं का कहना है कि घर गृहस्थी में रहते हुए जो व्यक्ति भक्त है तो वो विरक्तों से भी ज्यादा महान है, क्योंकि जाल में होते हुए भी भक्ति कर रहा है। यह एक अप्रिसिएशन का विषय है वास्तव में। यदि घर गृहस्थी में भजन थोड़े होता है तो फिर भी वो बहादुर व्यक्ति वास्तव में हीरो है, वीर है, जो घर गृहस्थी में रहते हुए भगवान की आरती करता है, यह भागवत पढ़ता है, प्रसाद खाता है, यह एक सफलता है। टोटल मिला करके यह आशा है कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। जो कर रहा है वो अच्छा व्यक्ति है, जो एकदम टोटल कर रहा है पूरा पूरा, वो सबसे अच्छा व्यक्ति है, वो नरोत्तम है। नरेश उत्तम नरोत्तम, जो मनुष्यों में उत्तम है फर्स्ट क्लास के। और भगवान तो साफ जग कहते हैं, यदि यहां पर नराधम नहीं बताया गया, लेकिन गीता में भगवान नराधम भी कहे हैं। नमाम दुष्कृतिनो मुद्धा प्रपद्यन्ते नराधमा। नराधमा मतलब मनुष्यों में एकदम गया बीता जो होते हैं, वही मेरा भजन नहीं करते। वो भले सांसारिक दृष्टि से बहुत बड़े हो गए हों, लेकिन वो सब नराधम है, मनुष्य में बिल्कुल अधम, कचरा, गोबर है वास्तव में, जो भगवान का भजन नहीं करते। और नरोत्तम वे हैं जो सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करते हैं। तब विदुर जी कहते हैं कि महाराज आप तो नरोत्तम नहीं बन पाए, और अब आपका समय भी नहीं है कि आप नरोत्तम बन पाएंगे, तो कम से कम धीर तो बनिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो कीजिए, 7 दिन में भी बहुत कुछ हो सकता है। ये यदि विदुर जी ऐसा नहीं कहे 7 दिन, तो कहते हैं अथो दीक्षिं दिसंजातु स्वैरज्ञात गतिर भवान इतोर्वाक्त्राय सह कालः पुंसां गुण विकर्षणः। अतः अथ का यहां अर्थ है अतः, इसलिए उदीचिन दिशम जातु, आपको चलना चाहिए अब उदीची दिशा, उत्तर दिशा में चलिए। पहले के लोग भारतवासी घर गृहस्थी बुढ़ापा में छोड़ करके उत्तर दिशा में जाते थे, हिमालय की ओर जाते थे, उत्तर दिशा में हिमालय है, उदीची दिशा का अर्थ है हिमालय। अब आपको उत्तर दिशा की ओर चलना चाहिए। तब चलने के लिए तैयार हो गया, वो बिल्कुल चलने के लिए तैयार हो गया धृतराष्ट्र महाराज, लेकिन वे कहे कि युधिष्ठिर से भीमसेन से पूछ लेते हैं, तो कहते नहीं, स्वयं अज्ञात गतिर भवान, स्वयं अज्ञात गतिर, अपने स्वजनों द्वारा आपकी गति, आप कहां जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं ये पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको जाने नहीं देंगे। जब ही धृतराष्ट्र महाराज कहते युधिष्ठिर से कि बेटा मैं अब हिमालय जाना चाहता हूं, तो महाराज तो रोने लगते, नहीं नहीं हम यहां सेवा करेंगे, आप अंधे व्यक्ति कहां जाएंगे, नहीं गंगा में गिर पड़ेंगे, खड्ढा में गिर पड़ेंगे, कुछ भी हो जाएगा, नहीं हम इस उम्र में आपको नहीं जाने देंगे, बाधा हो जाती। तो विदुर जी कहते हैं स्वयं अज्ञात गति भवान, स्वयं करते स्वजन ही अज्ञात गति, अपने जो व्यक्ति हैं आपके उनको पता नहीं होना चाहिए कि आप कहां जा रहे हैं। ये रात के समय बात हो रही है। अपने व्यक्ति तो इनके इमीडिएट शरीर के संबंधी तो नहीं थे, सब मर गए थे, लेकिन जो युधिष्ठिर आदि भी तो अपने ही थे, अपने परिवार के थे, तो वे न जान पावे, कोई न जान पावे, तो आप चलिए। फिर भी धृतराष्ट्र महाराज कहते हैं कि क्या अभी जाना जरूरी है कि कुछ दिन और बिता ले? नहीं नहीं, इतोर्वाक प्राय सहकालो पुंसाम गुण विकर्षण, इतो अर्वाक इतह अर्वाक, इसके बाद जो समय आने वाला है महाराज, वो मनुष्यों के सभी गुणों को खत्म करने वाला समय आ रहा है, धैर्य दया आदि गुण समाप्त हो जाएगा, जीव भोगों के लिए ललायत होंगे, उनमें दया नहीं रह जाएगी, सारे गुणों पर पानी फेरने वाला समय आ रहा है। और बात यह थी कि विदुर जी तो जानते थे कि भगवान पृथ्वी को छोड़कर चले गए हैं, जब तक भगवान यहां रहते हैं तो उसी तरह से मनुष्यों का मन धर्म में लगा रहता है, जैसे सूर्य के आकाश में होने से कुछ न कुछ उजाला रहता ही है, लेकिन भगवान पृथ्वी को छोड़ चुके हैं। और विदुर जी ये कह रहे हैं कि आगे बहुत खराब समय आने वाला है, वो तो आ चुका था, लेकिन उसके बाद दिन पर दिन खराब समय आने वाला है। और यह बात बिल्कुल सत्य है, हम लोगों को भी जानना चाहिए कि इसके बाद जो समय आ रहा है वो इससे भी खराब होगा, और खराब होगा, और खराब होगा, वह अच्छा समय नहीं आने वाला। इतोर्वाक प्राय सह कालो पुंसान गुण विकर्षण, विकर्षण का अर्थ है आच्छिन्नति, गुणों को छीन लेगा काल, समय बहुत खराब समय आ रहा है महाराज, इसलिए जल्दी निकलिए और अभी निकलिए, चलिए अभी चलिए, इस तरह से उपदेश कर रहे थे रात के समय। यह विचार हम सभी भक्तों को करना चाहिए, हम लोग योजना बनाते रहते हैं कि आगे ये करेंगे, आगे हम ठीक से करेंगे, आगे करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा समय अभी है, इसके बाद जो समय आ रहा है वो खराब समय है, खराब समय है, दिन पर दिन गलत समय आ रहा है। ये विदुर जी का वाक्य है, इतोर्वाक प्राय सह कालो पुंसाम गुण विकर्षण, समय के अनुसार भी मनुष्यों की बुद्धि बनती है, बिगड़ती रहती है, जैसे समय आता है एक के इन वृक्षों में पत्ता नहीं रहता है, जाड़ा छा जाता है, विंटर सीजन आ जाता है ना, काल देखिए कितना परिवर्तन कर देता है, कहीं आइस पड़ता है, कभी कुछ होता है, ठंडा ठंडा, इस समय सभी वृक्षों में पत्ते हैं, ग्रीष्म काल आया तो कितना अंतर हो गया। काल से लाभ उठाना चाहिए व्यक्ति को, सवेरे का जो काल होता है 24 घंटे में वो सबसे बेस्ट होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, भगवान की बेला कहते हैं, हमारे गांवों में तो लोग उसे राम राम की बेला कहते हैं, अभी भी। और कोई आदमी अगर संसार की चर्चा करे तो कह दे क्या राम राम के मेरा नहीं ये सब कर रहे हैं, इसी समझ मत करो। हम लोग जैसे मंगल आरती का वेला कहते हैं, भगवान के भजन का वेला, दिन के और भाग में हम उस समय को नहीं लौटा पाएंगे। विषयी लोग भी देखते हैं कि वो वॉकिंग करते हैं, भले वे कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, हेल्थ कॉन्शियस हैं, लेकिन टहलते हैं, वॉकिंग करते हैं। दिन चढ़ते ही रजोगुण छा जाते, घोर रजोगुण तमोगुण इसी में रहता है। तो सवेरे का समय अच्छा होता है, तो सवेरे जो व्यक्ति भजन किया, भगवान की आरती किया, कुछ भागवत पढ़ा नहीं तो दिन में क्या पढ़ेगा। तो 9 बजे 8 बजे कार सीधा हाकेगा, ले जाएगा कहीं तो वो समय सोने का नहीं होता है, उस समय उठ करके भजन करना चाहिए, परमाणु होता है। तो इसी तरह से भगवान के बाद इस पृथ्वी पर बहुत खराब समय आ गया है। विदुर जी कहते इसके बाद बहुत खराब समय आने वाला है, इसलिए चलिए चलिए चलिए। इस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र को विदुर जी ने उपदेश दिया और उपदेश हृदय में लग गया। 50 बार सैकड़ों बार उपदेश किया था विदुर जी ने इसके पहले, इनको कभी ऐसा उपदेश नहीं किया था और ये सुनते भी नहीं। पांडवों के साथ समता का व्यवहार तो कर ही नहीं सकते थे, घर क्या छोड़ते हुए, लेकिन आज उपदेश काम कर गया। इसीलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, हो सकता है 1 बार 2 बार 4 बार कहने के बाद कोई भक्ति करने लगे। एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित यजनीढः छित्वा स्वेषु स्नेह पाशां दृढिम्न निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शिताध्वा। इस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया किसने, अनुजेन विदुरेण, अपने छोटे भाई विदुर ने ज्ञान दिया। बहुत स्नेह से बड़े भाई को ज्ञान दे रहे थे। अनुजेन यह शब्द बता रहा है कि वास्तव में छोटा भाई छोटे भाई के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है, ये देखा गया है। मान लीजिए किसी के 4-5 पुत्र हों तो छोटा बेटा के सामने बड़ा बेटा पिता जैसा होता ही है, आयु में भी वो आगे होता है, तो उसका उपकार रहता है। विदुर जी पर बहुत बड़ा उपकार था धृतराष्ट्र महाराज का, उन्होंने पालन पोषण किया था, मेंटेन किया था। तो विदुर जी बहुत स्नेह से चाहते थे कि हमारे भाई मुक्त हो जाए जन्म मरण से, भगवान कृष्ण का भजन करे, शरीर छोड़ करके ये भगवान के धाम जाए, ये वो चाहते थे। और अंत में उनका स्नेहमय उपदेश काम कर गया। देख कितना कठोर बोल रहे थे कि आप इस घर में पड़े हुए हैं, ये करें वो करें। धृतराष्ट्र महाराज ने स्वीकार किया और कहा कि ठीक है विदुर, चलो। उस बुढ़ापा में, और जबकि वे बिल्कुल अंधे हैं जन्म से ही, और अब घर छोड़ करके, सुखमय भवन छोड़ करके महाराज धृतराष्ट्र हिमालय जाने के लिए तैयार हूं। इस तरह से ज्ञान का असर हो जाता है। 1 सेकंड में एक महात्मा को उपदेश से टूट गया सब कुछ, सारी ममता आदि टूट गई, देह के प्रति आराम बुद्धि आदि सब निकल। इसको उपदेश कहना था, इसको वास्तव में कथा कहते हैं। तो निकल गए। प्रज्ञा चक्षुर बोधितो याजमीढ, अजमीढ वंश में जन्मे हुए महाराज धृतराष्ट्र विदुर जी के द्वारा समझाने पर समझ गए, क्योंकि प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु का अर्थ है कि वे जन्म से अंधे थे, लेकिन अंधे व्यक्ति में एक गुण होता है कि किसी बात पर वो ज्यादा विचार करता है, क्योंकि दिखाई तो कम पड़ता है, इसलिए बात वो सुनता है ध्यान से। जब आज बात में खूब अच्छा से ध्यान से सुन लिए, तब सूत गोस्वामी कहते हैं प्रज्ञा चक्षु, कि प्रज्ञा ही जिनकी आंख है, वो बातें सुनते हैं अंधे लोग तो बहुत ज्यादा विचार करते हैं, आंख वाले उतना ध्यान से नहीं सुनते हैं। लेकिन वास्तव में देखा गया अंधे लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि शब्द का ही सहारा रहता है। महाराज धृतराष्ट्र एक एक बात पर विचार की और समझ गए और निश्चक्राम निकल गए। कहां से? हस्तिनापुर से। महाराज युधिष्ठिर के उस राजभवन से, उस सुखमय स्थान से निकल गए निश्चक्राम। भ्रातृ संदर्शिताध्वा, कैसे निकल गए? तो कहते हैं भाई अध्वा मार्ग दिखा रहे थे, विदुर जी हाथ पकड़ करके चल रहे थे। आगे वर्णन है, विदुर जी भाई का हाथ पकड़कर चल रहे थे और भाई का हाथ भाभी पकड़कर चल रहे थे, गंधारी भी चल दी। जब देखी कि हमारे पति जा रहे हैं हिमालय तो वह भी चल दी। भ्रातृ संदर्शिताध्वा, इस पर प्रश्न होता है कि अरे घर की और स्वजनों की सुदृढ़ आसक्ति को, स्नेह को कैसे महाराज धृतराष्ट्र तोड़ दिए? उसको कहते हैं छित्वा स्वेशु स्नेह पाशम दृढ़िन्न। दृढ़िन्न का अर्थ दृढ़, बहुत जकड़ा हुआ था स्नेह बंधन। लेकिन जैसे मान लीजिए कहीं रस्सी से खूब किसी को बांधा गया है, लेकिन कोई व्यक्ति तीक्ष्ण तलवार लेकर के आवे और बंधन सारा काट दे, फ्री कर दे, वैसे विदुर जैसे महाभागवत के वचन जो थे वो सारी आसक्ति को काट कर फेंक दी, बंधन खत्म हो गया, ज्ञान हो गया, आलोक हो गया। इसलिए वे स्वजनों में बहुत दृढ़ आसक्ति को, स्नेह को भी छोड़ दिए और निकल गए, निकल गए हिमालय जाने के लिए। यह बहुत बड़ी सफलता है वास्तव में, भले जीवन के अंत में हो लेकिन ज्ञान इतना हो जाए तो बहुत अच्छा है। किस लिए निकले? भगवान कृष्ण को पाने के लिए निकले धृतराष्ट्र महाराज। विदुर जी भगवान कृष्ण की बातें नहीं कह रहे हैं कि अभी भी धृतराष्ट्र महाराज के मन हो सकता था कि पांडवों का पक्ष लिए, ये लिए, वो लिए। आगे जाकर बताएंगे कि भगवान का ध्यान कीजिए ऐसे, यद्यपि भगवान को देखे नहीं थे, भगवान उनके संबंधी थे, आते थे, उनसे बातें करते थे, भगवान के वचनामृत को सुने थे धृतराष्ट्र महाराज, लेकिन आंख से देखे नहीं थे। ले जा रहे हैं विदुर जी को घर से। जब वे निकलने लगे तब गंधारी भी निकली। यहाँ वर्णन करते हैं, पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पते व्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्ड प्रहर्षं मनस्विनामिव सत्संप्रहारः। तो कुछ देर आप लोग फ्री हो जाए, इसके बाद 10 मिनट में फिर हम चालू करेंगे। तो एक भक्त ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि बीच में थोड़ा सा विश्राम देना चाहिए।
पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्ड प्रहर्षं मनस्विनामिव सत्संप्रहारः। पति प्रयान्तं